वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एज्रा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा। जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया, तुझसे जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और आज हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने व समझने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रियो, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों एज्रा नामक पुस्तक, जो बाइबल की एक पुस्तक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और अब तक हमने इस पुस्तक में देखा कि इसराइली बंधुआई में चले गए, जो राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बेबीलोन को ले जाए गए। कारण उसका यह था कि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में जाने दिया। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और अपने समय के अंतराल अर्थात लगभग 70 वर्ष के पूर्ण हो जाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें वापस उनके स्वदेश यरूशलेम में लाया। और तब हमने यह भी देखा कि वहां पर लोग दो किस्तों में आए, एक समूह आया जो लगभग 50,000 के थे। फिर बाद में और कुछ लोग आए, लेकिन बहुत से यहूदी वहां से आना नहीं चाहे। और यही कारण है कि जब कुछ लोग यहां पहुंचे तो उन्होंने वहां की स्थिति को देखा और वे परमेश्वर के भवन निर्माण को आरंभ किए। लेकिन जब वह आधा बन चुका तब हमने देखा कि वहां पर कुछ विरोधियों ने विरोध डाला, अड़चने डाली और उसे रुकवा दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एज्रा वहां पर आता है और अपने तरीके से उस कार्य को करने में एवं इसराइलियों को आत्मिक रीति से मजबूत करने में हाथ बटाता है। तो मित्रों, आज हम आगे बढ़ेंगे और इन सब बातों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें एज्रा की पुस्तक से, उसके जीवन से बोले और बातचीत करें, हमें समझाएं, सिखाएं, ताकि हम एज्रा के समान एक भले पुरुष बन सकें, हम अपने जीवन में और भी नजदीकी से आपको पहचान सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं या किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से दबे हुए हैं। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें ताकि वे भी आपकी ओर निहार सकें, जिस प्रकार आपने इसराइलियों को बंधुआई से छुड़ाया और एज्रा के माध्यम से आपने उन्हें आशीषित किया। आज हमारे श्रोता भाई बहनों के जीवन को भी ऐसा ही बना दें ताकि हर एक अपने जीवन में आपको महसूस कर सके। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस अध्ययन पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इसराइल का पहला दल जो स्वदेश लौटा और अन्य जातियों के साथ परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम करने लगा, जब एज्रा वहां आया तो उनकी दशा देखकर वह परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल गिर गया और क्षमा की प्रार्थना करने लगा। परिणाम स्वरूप उनमें जागृति आई। जी हाँ, इन्हीं बातों को हम देख रहे थे कि एज्रा ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, परंतु इस बात को उसने परमेश्वर के सामने रखा कि हमने, हमारे लोगों ने पाप किया है, और इस तरह से उसने क्षमा याचना की। आज हम देखेंगे एज्रा की अगुवाई में नव जागृति। एज्रा द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा के परिणाम स्वरूप यहूदियों में मन परिवर्तन हुआ, जिसके कारण उनके समाज सुधार हुए। सच्ची जागृति के परिणाम परखने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, आइए आप मेरे साथ निकालिए एज्रा की पुस्तक 10:1। एज्रा की पुस्तक 10:1, जो आज का हमारा अंतिम अध्ययन होगा। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रुका हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इसराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग विलक विलक कर रो रहे थे। ध्यान दीजिए, उस समय परमेश्वर की प्रजा में गहरा पाप बोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस बात को जान लिया कि वे पापी हैं, जिसकी घोर आवश्यकता थी। आज हम भी कई बार इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि हम इस बात को जान ले कि मैं पापी हूं, अर्थात पाप बोध हो जाए, तो निश्चय ही हमें क्षमा की आवश्यकता होगी। एज्रा 10:2 में लिखा है, तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इसराइल के लिए आशा है। जी हाँ, शकन्याह उनका वक्ता बना जो अपने पापों को मानकर अंगीकार करना चाहते थे। उसने एज्रा के पास आकर कहा, हम लोगों ने परमेश्वर का विश्वासघात किया है। जी हाँ, यह स्पष्ट पापांगीकार है, अर्थात पाप को स्वीकार करना है। उसने कहा, हमने अन्य जाति की स्त्रियों को ब्याह लिया है। मेरे मित्रों, यह स्पष्टवादिता है। उनके काम मूसा की व्यवस्था के विरोध में थे, क्योंकि मूसा ने उनसे कहा था कि अन्य जाति की स्त्री से विवाह न करना, अर्थात अपनी बेटियों को भी उन्हें न देना। उन्होंने इस गंभीर विषय में व्यवस्था के लेख को नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर चुके थे। अब वह परमेश्वर की दया का प्रार्थी होकर कहता है, परंतु इस दशा में भी इसराइल के लिए आशा है। जी हाँ, यह बहुत ही बड़ी बात है कि सब कुछ होने के बाद भी इसराइल के लिए एक आशा है। आइए देखें इज्रा पुस्तक 10 अध्याय के 3 पद में, अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। ध्यान दीजिए, पाप स्वीकारन में सहभागी होने वाले और भी थे जो परमेश्वर के वचन पर कांपने लगे, अर्थात उन्होंने वचन को पढ़कर उसका अध्ययन ही नहीं किया, उन्होंने वचन को मन में उतर जाने दिया। जब उन्हें अपराध बोध हुआ तब उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने तर्क का सहारा लेकर पाप ढांकने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि हम में से कई लोग करते हैं। उन्होंने सीधा सा अंगीकार किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार यह काम किया। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत दृश्य था। इज्रा 10 अध्याय उसके 4-6 पद में हम पढ़ते हैं, तू उठ क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिया बांध कर इस काम में लग जा। तब इज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इसराइलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने ऐसी ही शपथ खाई। इज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। जी हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है। उन्होंने मन की गहराई से विलाप किया। जो कुछ हुआ वह हृदय विदारक था, अर्थात हृदय को छेदने वाला, परंतु परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया गया था और उन्हें प्रायश्चित करना अनिवार्य था। मित्रों, नवजागरण का आरंभ इसी से होता है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलना होता है, जिसके द्वारा हमें पाप बोध होता है और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम तब देख पाते हैं कि हम परमेश्वर के लिखित वचन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। जब हम उसके समक्ष पाप स्वीकार करते हैं और मन में सच्चा पश्चाताप होता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर की संतान नव जीवन या नव जीवित प्राणी बन जाती है। मेरे मित्रों, आज हम खोए हुए संसार को प्रायश्चित पश्चाताप सिखाने में व्यस्त हैं, परंतु मुझे शक है कि परमेश्वर खोए हुए संसार से पश्चाताप करने को कहता है। वह तो कहता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने पर कुछ और भी होता है, जैसा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में हुआ। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस ने लिखा, वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर मूर्तियों की अपेक्षा उनकी प्राथमिकता बन गया था। पश्चाताप विश्वास से पहले नहीं आता है, पहले विश्वास होता है तब पश्चाताप आता है, जैसे दिन के बाद रात आती है। यदि ऐसा ना हो तो विश्वास सच्चा नहीं है, वह उद्धारक विश्वास नहीं है। पश्चाताप की आज कलीसियाओं में बहुत कमी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल में परमेश्वर कलीसिया का पश्चाताप के निमित्त आह्वान करता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को लिखे पत्रों में परमेश्वर 2 कलीसियाओं से पश्चाताप की आशा करता है। परमेश्वर विश्वासियों से बात कहा था, अविश्वासियों से नहीं। जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं प्रार्थना दिवस में विश्वास नहीं करता हूँ। वे कहते हैं, हम राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाएं, हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। ओह मेरे मित्रों, आप क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि इज़रा ने हित्ती, परिज्जी, कनानी, यबूशी, अमोनी, मुआबी, मिस्री, अमोरियों आदि को निमंत्रण भेजा कि वे प्रार्थना दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आज वह समय है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय सुसमाचार सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे विचार में आज प्रार्थना दिवस के लिए असंख्य मनुष्य एकत्र किए जा सकते हैं, परंतु इससे क्या लाभ होगा? परमेश्वर खोए हुओं से कह रहा है, मेरे पास आओ और मसीह के द्वारा उद्धार पाओ। वह कलीसिया से कह रहा है, मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ, अपनी उदासीनता और शिथिलता से बाहर निकलो। हमें आज जिस बात की आवश्यकता है वह है जागृति, और जागृति विश्वासियों में मन फिराव के बिना आना संभव नहीं है। जी हाँ, इज़रा के साथी उदासीन नहीं थे, परंतु आज हमारी कलीसिया में उदासीनता व्याप्त है। प्रियो, वर्षों पूर्व लेमेन एवर्ट ने कहा था, मेरे बाल्यकाल में मैंने मेरे पिता को कहते हुए सुना था कि यदि परमेश्वर चमत्कार करके प्रत्येक शिथिल उदासीन मसीही जन को 10 नास्तिकों में से बदल दे तो कलीसिया स्तुति और धन्यवाद का दिन मनाएगी। आज की समस्या यह है कि कलीसिया में उदासीन एवं शिथिल विश्वासी भरे हुए हैं। उनमें से कुछ संभवतः उधार से रहित हैं। यदि जागृति आ जाए तो मेरे प्रियो, आप इस उदासीन समूह को या तो परमेश्वर के पास आता देखेंगे या वे स्पष्ट कर देंगे कि वे शैतान के हैं। इज़रा सच्चे पश्चातापी मन से परमेश्वर के निकट गया और अन्यों ने उसका अनुसरण किया। जी हाँ, जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो निश्चय है कि लोग आपके जीवन को देख करके प्रभावित होंगे, आपकी निकटता में आएंगे और उस सच्चे परमेश्वर को आपके द्वारा से जानेंगे। इज़रा 10 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति ना मानेगा और 3 दिन के भीतर ना आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा में से अलग किया जाएगा। यह वास्तविक पृथकीकरण था। वे मूसा की व्यवस्था के अधीन थे। आज कलीसिया में, जहां तक मेरा विचार है, आप इस प्रकार का असंभवी कार्य नहीं कर सकते हैं। वे अच्छे गेहूं से यथासंभव भूसी अलग कर रहे थे। जी हाँ, किसी भी पड़ोसी स्थान से यरूशलेम आने में 3 दिन का समय लगता था। ये आदेश उनके लिए था जो बेबीलोन की बंधुआई से लौटे थे कि यरूशलेम शहर पनाह और मंदिर का पुनः निर्माण करें। उन्हें आत्मिक स्फूर्ति के लिए वहां आना था, परंतु उसके पूर्व पश्चाताप होना आवश्यक था। वे जो सोचते थे कि यह उनकी इच्छा के विरुद्ध है या जिन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा। जी हाँ, कलीसिया को भी शोधन की आवश्यकता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि जिनका पता नहीं है उनका नाम रजिस्टर से काट दें, परंतु कलीसिया की आज आवश्यकता यह है कि उन सदस्यों का बहिष्कार करें जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है, परंतु वे पश्चाताप करते ही नहीं। आज कड़वाहट कुनीन की गोली के समान है, वह संपूर्ण जल को कड़वा कर देती है। मुझे आज भी स्मरण है कि जब मैं छोटेपन में मुर्गी काटता था तब मेरी माता कहती थी, सावधान, पीत की थैली न फूट जाए, नहीं तो पूरा मांस कड़वा हो जाएगा। और आज परमेश्वर यही करना चाहता है, वह कलीसिया से पीत की थैलियां निकालना चाहता है। उदाहरण के रूप में देखें, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जी हाँ, कलीसिया में कुछ ही कुड़कुड़ाने वाले, कुछ ही आलोचना करने वाले आत्मिकता को पूर्ण रूपे नष्ट कर देते हैं। ओह, कितने जीवन कड़वाहट के कारण नष्ट हो गए हैं। हम इज़रा की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं, तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब इज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया है, इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। दूसरे शब्दों में वचन के सुनने वाले ही नहीं करने वाले भी बनो। आज हम कलीसिया में कर्मठता के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु कलीसिया की जो मुख्य आवश्यकता है वह है शोधन की, पवित्रीकरण की। पाप स्वीकार करना है जो कलीसिया के लिए आवश्यक है। प्रेम की कमी का भी स्वीकार किया जाना आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 35 पद में यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जी हाँ, आज आपको देख करके कौन कहता है कि आप मसीही हैं या एक विश्वासी हैं? क्या आपका जीवन प्रेम पूर्ण जीवन है? यदि नहीं तो आज आपको भी अपने जीवन के बारे में सोचने की और विचार करने की आवश्यकता है। इज़रा की पुस्तक 10 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। जब इज़रा ने उनसे कड़वा घूंट पीने को कहा, तब मुझे पूरा विश्वास है कि उनके हृदय फट गए होंगे और आत्मा विलाप करती होगी, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय जनों से अलग होना था। जी हाँ, उन्होंने गैर स्त्रियों से या अन्य जातियों से विवाह कर लिया था और अब उन्हें छोड़ना था। यह बड़ी रोचक बात है कि उनके एकत्र होने पर आंधी उठी और वर्षा भी आई। इज़रा 10 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। ध्यान दीजिए, आंधी वर्षा के कारण वे तितर बितर होना चाहते थे, परंतु इज़रा बुद्धिमान था। उसने कहा, हम यहाँ वर्षा और आंधी में खड़े रहना चाहते हैं, विशेष करके बच्चों और स्त्रियों के कारण। अब हम इस काम को टालने का प्रयास करें तो उचित यही होगा कि हम कल फिर यहीं एकत्र हों कि विधिवत हम काम कर सकें। आगे इज़रा 10 उसके 14 पद में लिखा हुआ है, समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर ना हो और यह काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हों वे नियत समयों पर आया करें और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इज़रा व्यवस्थित रूप से सब काम करना चाहता था, अतः उन्होंने यह काम किया। आगे हम देखते हैं इज़रा 10 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपने स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। प्रियो ध्यान दीजिए, उनकी भेंट से स्पष्ट था कि वे एक मन से आए थे। परमेश्वर के निमित्त सब ठीक करने में वे एक मन थे। जी हाँ, इसके बाद वह उनकी सूची देता है जिन्होंने अपनी अन्य जाति पत्नियों का त्याग किया। उन्होंने इस काम को करने की शपथ खाई और वाचा बांधी। इज़रा 10 अध्याय उसके 44 पद में साफ साफ लिखा हुआ है, इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। जी हाँ, यह पद एक दुखद कहानी है, नहीं है क्या? पितरों के पाप संतान भोगेगी। यहाँ पर हम इस पृथकीकरण की परिपूर्णता को देखते हैं। उस पल इज़रा परमेश्वर का दूत था। कम से कम उस पीढ़ी में उसने परमेश्वर की योजना की पूर्ति के निमित्त यहूदियों की गवाही बनाए रखी। मेरे प्रिय मित्रों, जितने लोगों ने अन्य जातियों से विवाह किया था उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें वचन का पालन करना था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पाप के कारण उनकी संतान को पाप का दंड भोगना पड़ा। मेरे मित्रों, आज आपके लिए और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को न केवल सुने परंतु उसका पालन करें। आज हमारे बहुत सारे प्रिय भाई बहन गलत रास्तों पर चले जाते हैं, अन्य जातियों से विवाह करते हैं, जबकि बाइबल हमें इसके लिए मना करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम असमान जुए में न जुतो। जी हाँ, उसका कहना है कि आप विश्वासी विश्वासी के साथ ही विवाह करें। आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को और भी गंभीरता से समझने और जानने की आवश्यकता है ताकि आप वचन के गहरेपन को समझ सके। जिस प्रकार इज़रा बंधुआई से लौटने के पश्चात न केवल उसने मंदिर के निर्माण व सहरपनाह के निर्माण और पूरे इसराइलियों समाज के निर्माण में अपना सहयोग दिया, आज वह चाहता है कि हमारी कलीसिया भी इन बातों पर ध्यान दे, एक नई जागृति हमारी कलीसियाओं में उत्पन्न हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और उससे कहें, प्रभु आप मेरी कलीसिया में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में अपनी आशीष दे ताकि आज हमारी कलीसियाओं में इज़रा उत्पन्न होने पाए। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
प्रभु ने मुझको बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा दिया, प्रभु ने मुझको बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा दिया, अनुग्रह शांति और प्रेम दिया, अपने जीवन से भर दिया, पापों से मन से विश्वास लाओ तुम, पापों से मन फिराओ तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु सहारा।